जिसमें कि नाम लेने में कोई काल का विचार नहीं, पवित्रता पवित्रता का विचार, निंदा का विचार नहीं, जाति का विचार नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी तरफ हमारी रुचि नहीं हो रही है, महाप्रभु जी क्यों कहते हैं, अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए, किसके लिए,
शिक्षा के लिए, दूसरों,
हम साधकों के लिए कर रहे हैं और अपने को साधक समझ करके ये कर रहे हैं। वो भी ठग में नहीं है किसी को, जैसे जब भाव में रहते हैं ना, कहते हैं उसी में वो एकदम रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे कहा जी हमको कृष्ण में तनिक भी प्रीति का गंध नहीं है, अनुभव कर रहे हैं। ये पुलिंदी को, जंगल में रहने वाली एक फील कन्या को, जितना कृष्ण में प्रेम है हमारा तो उतना भी नहीं है। एक हिरणी को कृष्ण में जितना प्रेम है, राधा जी का प्रेम उतना प्रेम हमारे अंदर है। हिरणी बिना किसी बाधा के, परवाह किए बिना संसार के, किसी के भी पति का भी परवाह नहीं कर सकते, एकदम कृष्ण के पास में आकर के उनके मुख के तरफ में निहारती है अपलक, जिसका नेत्र इतना चंचल है, किंतु अपलक उनकी दृष्टि एकदम निकट चली जाती है। और हम ऐसे हैं कि अपने पति की परवाह करते हैं, जाति का, समाज का, और उनके पास में आ नहीं सकते, तो इसलिए हमारे अंदर में कुछ प्रेम की एकदम तरीके एक बिंदु में। इसलिए वहां परमेश्वर की उपासना का तात्पर्य नृसिंहदेव की, नृसिंहदेव के शरण में आ रहा करके कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, गौरचंद्र की उपासना कर रहे हैं।
और अगर कोई साधक नित्यानंद प्रभु जी के उसमें रहे तो
कोई गर्जन तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब एक ही है।
नृसिंहदेव जी और नित्यानंद प्रभु क्या वैशिष्ट है,
बलदेव प्रभु जी के नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश के अंश के अंश है निशिंग, बलदेव प्रभु अपने एक अंश निशिंग के और वो भक्तों की रक्षा करते हैं।
तो गौड़ीय परंपरा वाले में अगर नित्यानंद प्रभु की तरफ ज्यादा हो करें तो
कोई बात नहीं, तो एक ही चीज है, एक ही चीज
ऐसा है कि एक दिन में बड़ा था कि
अभी तुमको भेद मालूम हो रहा है किंतु उस समय में भेद नहीं मालूम हो रहा है। नित्यानंद प्रभु जी सब प्रकार से महाप्रभु जी की सेवा करते हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु की सेवा करने से नित्यानंद प्रभु जिसकी जैसी रुचि है उसी तरह से उसको कृष्ण के चरण में लगा दे। और अभी मैंने बताया कि वो अरे भाई ने अवश्य नहीं है ऐसा मान, ऐसा नहीं, महाप्रभु जी में नित्यानंद में कोई अंतर नहीं, एक ही तत्व है, नाम भेद है, स्वरूप भेद है।
श्रील प्रभुपाद जी ने एक जगह ये लिखा कि चार रसों के गुरु नित्यानंद प्रभु है और जो उसके श्री चैतन्य महाप्रभु या स्वरूप दानंद
कहने के लिए तरीका गया है, सिद्धांत का ठीक है, क्योंकि जब वही अनंग मंजन हो जाते हैं तो फिर पांचों रसों के वही इसे से समझो। रघुनाथ के ऊपर में, रघुनाथ दास जी के ऊपर में नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हुई और कानून को पहुंचा दिया, वहां पहुंचाया महाप्रभु के पास में, रघुनाथ के पास तक पहुंचाया, तो महाप्रभु जी क्या है राधा और कृष्ण के निमित्तम उनकी सेवा प्रदान करती, राधा और कृष्ण की जुगत सेवा को प्रदान करती, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे नित्यानंद प्रभु नहीं करें। विषय चाहिए कभी शुद्ध हमें मोन कभी हमी हे रभी सिंधव, उसके ऊपर में कहा नित्यानंद करुणा है संसार
कभी कुछ
कभी कुछ और उन्हीं की कृपा से रूप सनातन की जब हमारे ऊपर में कृपा होगी तब तो वृंदावन को मैं समझूंगा वृंदावन क्या है और जुगल क्या है चीज है ये समझ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से ही वृंदावन में आए, उन्होंने लिखा है नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से मैंने वृंदावन को प्राप्त किया, उन्हीं की कृपा से हमने राधा कृष्ण राधा गोविंद गोपीनाथ जी का मैंने दर्शन पाया, उन्हीं की कृपा से हम सब रूप सनातन की किताब उनको पढ़ना है। उन्हीं की कृपा से जो कुछ मैं लिख रहा हूं उन्हीं की कृपा से। उन्होंने चैतन्य चैतन्य में लिखा क्या है, जुगल के अतिरिक्त जुगल प्रेम कर
तो कृष्ण की लीलाओं का प्रकाश हुआ या थे, इसलिए माधुरी लीला का प्रकाश भी
होगी।
और जिस भाव वाला जो जीव होगा उसको उसी तरह के गुरु के साथ संपर्क कराने लगी, क्योंकि मूल गुरु
ही वही प्रेरणा देंगे। जबकि प्रेरणा देंगे नित्यानंद प्रभु राष्ट्र भक्ति के आचार्य गुरु का जो कृपा करेंगे तो शांत रस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जो कृपा करेंगे तो सब रस देगा, उसमें कृष्ण से सब प्रभाव रखते हैं। वास्तव रूप में वो वास्तव रूप से कृपा करते हुए यशोदा और नंद बाबा के माध्यम से वो नंद यशोदा बलदेव जी से भी उनका स्वागत करते हैं संस्कृति से और गुरु की कृपा में कहीं से गलत तत्व नहीं। आज वो नहीं आए विनोद बिहारी जी मैंने कितना पहला तो पास करना
होता है। ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान राम के गृह में दशरथ जी के प्राण एकदम से निकल गए थे, जबकि नंद बाबा और गोपी उनमें से किसी के प्राण नहीं थे। वो तो ऐसे वो ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उनकी भक्ति ज्यादा प्रकार की थी, उनके प्राण भी नहीं रुके उनके गृह में।
किंतु ये विचार करो, नंद बाबा सोच रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊंगा तो कृष्ण एक सेकंड में जीवित नहीं रह सकेगा, इसलिए प्राण छोड़ना ठीक नहीं, इसे कृष्ण को कष्ट होगा, इसलिए मैं जितना भी कष्ट होगा मैं इसको सहूंगा, इष्ट के लिए सहूंगा। और जब राम दशरथ जी नहीं सह सके इसलिए उनसे ये श्रेष्ठ।
जैसा दर्शन जी का अखंड शरीर और नित्य समरूप शरीर
उनका भी नित्य हूं, वो इस प्रकार का दिख रहा है अभिनय करके। क्योंकि रामचंद्र जी जब लंका से लौट रहे थे सीता जी का पत्र किया तो दशरथ जी वहां पर आए और उनको समझाया जो नहीं पद को जो मरे नहीं थे, इसलिए माया की क्रिया दिखा दिया जो वो मर गए बड़े नहीं। रामचंद्र जी का किसी भौतिक लोगों से सब में तो नहीं हो सकता,
सभी के सभी के
चिन्ह
चिन्ह
विशेषकर के माता पिता जब मर गए रहे तो रहते तो कौशल्या ने कौशल्या और दशरथ
जो पिता थी
नंद और इसमें नंद बाबा और यशोदा ने देखिए बस दोनों नहीं प्रवेश करते, ये सची माता और जगन्नाथ जी हैं, उनमें देवकी वसुदेव नंद बाबा यशोदा कश्यप अदिति सब उसमें प्रवेश करते, ये जो नदी गए तो उसमें प्रवेश कर सकते सब जैसे अभी द्वारका में स्थान दिखलाते हैं ब्राह्मण लोग और ये सब वहां के लोग, ये कृष्ण यहीं पर मर गए थे यहाँ पर उनकी अंत्येष्टि और ये अग्नि संस्कार हुआ, ये भी दिखलाते हैं।
भागवत को इसको नहीं दिखलाते,
वो शुद्ध ग्रंथ है, वो मूर्खों के लिए है, जल्द आदमी
नहीं
कर सकते ये चिन्ह चीज क्या है।
महाराज जी एक बात होती है, छोटे से बालक के रूप में नारद जी ने चार मास तक संतों के साथ संग किया और जाते समय उन्होंने कृपा की उनकी, उन्होंने नारद जी को दीक्षा दी, मंत्र दिया और नारद जी उसी भाव उसी मंत्र के साथ भजन करते रहे और उस शरीर में फिर उसके बाद जब दूसरे शरीर में आए तो उन्हें नारद जी का रूप धारण किया। उसमें फिर ब्रह्मा जी को गुरु बताया गया।
तो जन भाषा मनु को कम एक गुरु
किचन की आ रही है ना
किचन का
किचन में नहीं
है जरूर
तड़के की आ रही
है सब्जी की
हाँ कभी किचन में तेल का कुछ चौंक सा लगा चौंक सा चौंक ही रही है
थोड़ी देर पहले लगा होगा चौंक
तुम्हारा सब्जी तो अच्छा ना थी
छोटी
जी ने आज खूब कड़ा
दिया शरीर मतलब ब्रह्मा जी के शिष्य के उन्होंने कहा तो उन्होंने क्या कहते हैं जो
बच्चों से बहुत ध्यान दे दिया
अपने पूर्ण जन्म में उन्होंने आपने बताया था चार कुमार जन आए थे उनसे उन्होंने दीक्षा लिया या मंत्र दिया जो महात्मा चतुर्मासी में आए थे उनसे उन्होंने मंत्र देके भजन किया और वहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन किए उसी थोड़ी सी देर के लिए और उसी भाव में वो हुई है उसी शरीर में फिर नेक्स्ट लाइफ में वो ब्रह्मा जी के पुत्र बन के आए और दिव्य रूप दिव्य शरीर को प्राप्त हुए।
अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जन्म वैसे इनको समझ लीजिए नित्य जी कृष्ण के परिकर है
कृष्ण के परिकर है
लीला के परिकर हैं सब समय बद्ध जिन नहीं है वैसे कृष्ण नित्य अपने स्वरूप में स्थित हैं कभी किसी के पुत्र इत्यादि कर्म बराह इत्यादि के रूप में आते उनका वो जन्म नहीं है ऐसे नारद जी सब समय भगवान के परिकर हैं नित्य तब कभी कभी जैसे कृष्ण लीला करते के लिए दूसरों की शिक्षा के लिए आते हैं वैसे सृष्टि के प्रारंभ में हैं कब सृष्टि के प्रारंभ में अनादि कौन सी पहली है उसमें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए मानस पुत्र माने उसके पहले अभी मैथुनी सृष्टि नहीं थी स्त्री पुरुष के संपर्क से चाहे किसी भी जानवर हो ये वृक्ष मनुष्य का होता है स्त्री और पुरुष के संयोग से वह सृष्टि होती है तभी इसकी प्रारंभिक नहीं हो अभी प्रारंभ इसका हुआ ही नहीं था उसके पहले ब्रह्मा जी मन से इच्छा की हमारी प्रजाएं हों ये जगत सृष्टि हो क्योंकि कृष्ण ने भगवान ने उनको आदेश दिया है तो उस समय में उनसे ध्यान मत बांटा भाई छोड़ दो उन्होंने इच्छा की कि हमको पुत्र या संतति हो मन में इच्छा की और पुत्र हुआ इसको कहते हैं मानसी सृष्टि मन के द्वारा मानसी गंगा कृष्ण ने सोचा जो ये हो लेट वर्ल्ड
इट बी
वर्ल्ड वर्ल्ड हो गया स अकामयत उन्होंने कामना की और ये सब सृष्टि हुई उसी तरह से सृष्टि के प्रारंभ में जब कृष्ण ने उनको मंत्र दिया चतुष्लोकी और उनके अंदर में शक्ति भर दी
ब्रह्मा जी
के अंदर वो आप सृष्टि कर सकते हो
मेरे फूल श्रद्धा के फूल
अरे उनको कहाँ रख दिया क्या ब्रज बिहारी जी को
ब्रज बिहारी जी आ नहीं पाएंगे बताया ना
क्या हो गया
क्या हुआ
काम में लग गए जगत हो तो जगत कैसे हो इससे पहले उन्होंने मन से कुछ मानसी सृष्टि जैसे नारद जी मरीचि, वशिष्ठ, पुला, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ का नाम लिया है ना,
गौतम,
गौतम, ये सब जो है मन से जो मैंने इच्छा की और ये पर, हमारे जैसा ही हो तो वो लोग मन से उनकी सृष्टि या इच्छा की अभोग, इन्हें इनको मानस पुत्र कहते हैं। नारद, नार से ये मानसिक सृष्टि आया था तो उनके गले से निकल गए।
अच्छा,
गले से माने उनके गले में देव और स्वर ब्रह्म है, इसलिए ये स्वर ब्रह्म के अवतार माने जाते हैं। नार, एक तो उनके नार से निकले, नार माने गला, और गला से निकल करके, गला से निकलने का माने क्या, उनके गले में जो कुछ है कंठहार के रूप में, क्या कंठहार, सार्वभूत का सार, ये सब लेकर के कृष्ण कीर्तन करते हुए वो प्रकट हुए, इसलिए नारद कहते हैं। स्वभाव से ये भक्त थे, ये पहले पहले जन्म की बात कर रहा है, और ऐसे ही गान करते हुए उनका बाल्यतन इत्यादि नहीं है, किसी रूप में बड़े सुंदर रूप में निकल करके कीर्तन करते हुए और वो वहां से चले गए अपने काम में। देखिए चले ब्रह्मा जी का दर्शन करते थे और सब समय सब संसार में वो कृष्ण नाम इत्यादि करते थे।
ये ब्रह्मा जी के पुत्र हुए इन्होंने
वो सभी
सभी के सभी
सभी
इन सबके लिए ब्रह्मा जी उनके गुरु तो नहीं माने जाएंगे,
अब उनसे निकले हैं उनके
पुत्र तो ठीक
है, पुत्र हैं, इसलिए सब लोग उनको पितामह कहते हैं। ब्रह्मा जी का अभिमान है ये हमारे पुत्र हैं। उन्होंने सबको ये कहा कि तुम लोग सृष्टि करो, अब उन्होंने तो किया था मानसिक सृष्टि, इनको कहा कि तुम कुछ मानसिक स्त्रियों को भी बुलाया और कहा कि तुम लोग इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। वशिष्ठ जी ने मान लिया, अत्रि जी ने भी मान लिया, अत्रि जी ने विवाह किया
अनुसुईया देवी,
अनुसुईया फिर मानसिक
वो प्रथम मनु की कोई पहले मनु को मनुष्य अपने मानस सृष्टि से की, उनकी कश्यप और अदिति ये जिसको उनके पुत्र जो मनु हुए ये लोग ऐसे मैथिली सृष्टि से नहीं पैदा हुए, तो ब्रह्मा जी ने इनको भी सृष्टि की कश्यप अदिति, उससे कुछ लड़कियां और लड़के हुए और फिर इसके बाद में शंभु मनु हुए ब्रह्मा जी के, फिर उनसे भी कुछ मन से हुए, इसके बाद में ये सृष्टि जो हम लोगों की अभी चल रही है इसके लिए इन लोगों को भाग दिया, इसलिए वशिष्ठ जी ने अरुंधति को और अत्रि ने वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी की पत्नी थी याद नहीं हमारा क्या नाम वशिष्ठ जी
अरुंधति
और वो अत्रि की
अनुसुईया
अनुसुईया और ऐसे ही ऋषियों की सब, किंतु नारद जी ने माना नहीं, कहे तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो हम तो कृष्ण का भजन करेंगे और जगत को यही शिक्षा देंगे, यदि हम नहीं माना कहे तुम हमारी बात नहीं मानता तो जाओ तुम अभी गंधर्व होकर के जन्म लो और उसमें तुमको 60,000 गंधर्वियों से शादी करके शादी मतलब ऐसे रह करके तुमको इस भोग में जाना पड़ेगा मस्तु, किंतु आपका आदेश पालनीय नहीं है क्योंकि भगवत भक्ति से ये रहित करने वाला है, हम दूसरे जन्म में जाएंगे किंतु जान बूझ करके हम इस संसार चक्र में नहीं पड़ेंगे। अब वो कुछ समय के बाद में गंधर्व होकर के जन्मे, उनका नाम हुआ कौन गंधर्व हमारे मुझे याद नहीं आ रहा, वो गंधर्व होकर के जन्मे। गंधर्विया बड़ी सुंदरी, गंधर्व माने बहुत ही सुंदर जाति, बहुत सुंदर और राग रागनी के वाद्य के ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं
गायन कला में,
गायन कला में मिट्ट कला में, और बड़े सुंदर स्वरूप, गला मीठा आवाज, तो वो पूर्व जन्म के अभिसंपात से उनके साथ में कुछ वर्ष तक रहे। रहने के बाद में इन्होंने सोचा जैसे पूर्व जन्म का संस्कार तो भक्ति का, भक्ति के ऊपर में कोई भी अभिसंपात इत्यादि काम नहीं कर सकता, स्थूल शरीर पर काम करता है, भक्ति पर कुछ नहीं। कोई असुर हो जाने पर, दीक्षा होने पर उसकी भक्ति एकदम जैसे की तैसी रहेगी।
दुष्टासन का भी असुर हुआ, कुछ भक्ति नहीं,
भक्ति पर नहीं होगा। इसलिए स्थूल शरीर से तो वे हो गए, और स्थूल शरीर का जो वांट है, डिजायर, जल वर्ल्डली सब खाना पीना और ये सब ये तो रहेगा, किंतु भक्ति जैसी की तैसी रहेगी, बल्कि और बढ़ी। उन्होंने सोचा जैसे ब्रह्मा जी ने हमको ऐसा कर दिया, तो अब हमको क्या करना चाहिए। बाई चांस एक दिन ब्रह्मा जी का आदेश आया, हमारा यज्ञ हो रहा है पुष्कर में, तुम बलबल के साथ में, गंधर्व और गंधर्वियों के साथ में वहां पर नृत्य और गान परिवेशन करना, बांटना, मैंने सब लोगों को चित्त मनोरंजन कर। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो भगवान के लीला को गुणगान गायन करके सब लोगों को चित्तरंजन करना। सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, आज मौका आया, और वहां जाकर के भगवान का गुणान बात करने के पश्चात उन्होंने कुछ ऐसी अश्लीलता की जिससे ब्रह्मा जी कुछ नाखुश हो गए। उन्होंने अर्धनग्न अवस्था में कुछ ऐसे पोज किए जो उनको मनोभीष्ट नहीं। उन्होंने सोचा कि इन्होंने तो यही हमको अभी संपाद दिया इसी काम के लिए, और यही काम यदि कर रहा हूं तो इनको क्यों क्रोध हो रहा है। आ रहा है समझ में? उनको गंधर्व के लिए क्या, गंधर्वों का यही काम है। तो उसमें बहुत लोगों को बहुत सारी रुचिकर हुआ, किंतु ब्रह्मा जी को कुछ खराब लगा। ब्रह्मा जी ने कहा अभी संपाद दे जाओ, तुम शुद्ध होकर के जन्म, बस एकदम नृत्य करने लगे आनंद में विभोर होकर के। अब हमको भजन का शब्द, ये इनका तीसरा जन्म है, शुद्धानी के कर्म से जन्मेंगे। और उसी समय में वो भक्ति जो प्रबल कारण उनके अंदर में थी, उसके वजह से भगवान ने कृपा करके चतुर्सन को, जो कि पीछे से वो भी मानस पुत्र थे, और उनको भी उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी ने तुम सांसारिक सृष्टि करो, तो उन्होंने माना नहीं, तो वो ज्ञानी थे इसलिए उनके अभिसंपात को उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया। अभिसंपात दो प्रकार के होते हैं, किसी ने कह दिया कि जाओ तुमको ये होगा, कहे तुम्हारा अभिसंपात तुम ही को लगे, हमको नहीं लगे। तो वैसा जब प्रबल होगा ना तो ऐसा हो जाएगा। या जैसे चित्रकेतु महाराज जी को पार्वती ने अभिसंपात दिया, शिव जी इस पर दंग रहे, इसने अभिसंपात दे दिया, किंतु उन्होंने कुछ नहीं, हंस करके उन्होंने ग्रहण कर लिया। ये भक्तों का ये चाहिए,
ये गुण
बदले में भावना में उद्देश्य नहीं है। वो जानते हैं कि भक्ति तो नित्य है, इस पर तो ये अभी संवाद का कुछ होगा नहीं असर, हम बेकार का क्यों उसको ऐसा करें। तो ये बड़ा चीज है ना,
भक्ति पे भरोसा,
भक्ति का भरोसा। इसलिए उन्होंने देखा कि हमारी भक्ति तो बिगड़ी नहीं, हम तो जैसे ठीक ही चल रही है। वो अब उनका अभिसंपात श्राप लोग अंगीकार करते गए, उनके लिए कुछ अब सुविधा नहीं। तो उसी प्रकार से वो ज्ञानी लोग थे, तेजी थे, इसलिए उसका अभिसंपात ग्रहण नहीं किया। वो किसी प्रकार से संसार में नहीं जाए, वो अब भक्ति उनको उनके ऊपर नारजी कर कृपा करके उनको प्रेरणा देकर के वो ला रही है, या भगवान ही को लेकर के इनसे मिलन किया बचपन में। अब वो बड़े हो गए, ये छोटे हो गए नारद जी, उन लोगों ने आकर के एक चातुर्मास का चार महीना वहां पर रहे उस गांव में जहां पर ये पैदा हुए। इनकी मैया भी इनको बच्चे को लेकर के गोदी में पहुंच जाती, और उसको गोदी से उतार करके, अभी छोटा सा बच्चा, वो खेलने लगा, खेलने लगता, और वो उनके जूठे बर्तनों को साफ करके चौके को लीप पोत करके ठीक, और उनके पत्ते में जो बचा रहा था ठाकुर जी का प्रसाद, उसमें कुछ लेकर के बच्चे को बड़े प्रेम से खिलाता, आइए बड़े श्रद्धा के साथ में खाता। उनका जो काम बड़े सत्संग के द्वारा लाभ होता है, वही वैष्णवों के पद जल पीने से चरणामृत, और वैष्णवों के मुखार बिंदु से निकले हुए ये जूठा
और दूसरा जो था उनकी हरि कथा, यदि उसका कोई पान करे वैष्णव पद
भक्त पद धूलि,
भक्त पद धूलि, भक्त पद जल,
भक्त भक्त से
ये साधन का ये बल है, भक्तों की चरण धूलि। यदि भक्त वैसे हैं प्रबल भक्ति वाले, उनके चरण भौत जल, उनके चरण धूलि और उनका जेठी उच्छिष्ट, उच्छिष्ट माने एक हरि कथा और एक दूसरी ये प्रसाद, ये साधारण चीज नहीं है। ठाकुर जी के प्रसाद को कहते हैं महाप्रसाद, इनके प्रसाद को कहते हैं महा महा। तो हमारा उसी से चित्त बदल गया, इसी से चित्त हमारा बदल गया और मुझे अंदर में भक्ति की बहुत प्रेरणा हुई और मैं सोचा अब मुझको भी मंत्र लेना चाहिए। रोने लगे, चार महीना बीत गया, ऐसा चलता रहा था, हरि कथा खूब सुनते ध्यान से बैठ जाता बच्चा, सब लोग इधर रह हो जाते, तो एक टक से एक कान से ही सब सुनता, सुनने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों? वो तो जैसे कथा सुन रहे हैं उनसे भी भक्ति मार्ग में ऊंचे हैं चीजें, फिर तो दिखला रहा हूं ये साधक को ऐसा होना चाहिए, साधक को चित्र सब विदा कर रहे हैं। इसके बाद में चार महीने के बाद में जब जाने लगे तो बच्चे को प्यार करने लगे तो बच्चा रोने लग गया, मैं कैसे आप लोगों को छोड़कर करूंगा, मैं कोई चिंता नहीं, तुमको ये मंत्र दे देते हैं भगवान का इनका संग करना और इससे तुम्हारी सारी जितनी आकांक्षाएं सब पूरी। तो उन्होंने मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद में उसको भैया उनको स्नेह करके उसको सांप काट दिया, कौन काटवाया, भक्ति देवी ने प्रेरणा करके काल के द्वारा ये सब बनाकर उसे मैया को कटवा दिया। ये तो अन्याय हुआ ना, तो नहीं उसके लिए भी अच्छा हुआ और वो दूसरा शूद्रनारायण थी वो भगवत भक्त होकर के कहीं जन्म ले ली भक्तों के घर, उसका भी कल्याण इनका भी कल्याण। तो इन्होंने माता को छोड़ करके जंगल में चले गए और कठोर साधन आरम्भ किया, स्नान किया और स्नान करके एकदम ध्यान कर दिया, उनका ध्यान तो लीला मात्र, अभी ने हम लोगों जैसा नहीं प्रयास नहीं, फसल जब झट उनका ध्यान लग गया। कुछ दिनों के बाद में एक झलक भगवान के मिली, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए उनको दर्शन, दर्शन होने के बाद में अंत ध्यान में जाने के बाद में ये विलाप करना रह नहीं सके, एकदम मत हो गए। कुछ दिनों के बाद में प्रभु ने उनको आश्वासन दिया, तुम खेत मत करो, दुख मैं सही साथ दर्शन नहीं दूंगा, तुम्हारे अंदर में कुछ अभी अनर्थ है और ये शरीर पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार में बनता है, तो ये कर्मजनित शरीर है, अब इसमें इससे अधिक नहीं होता और इसमें प्रेम नहीं होता, इसलिए तुम्हारे वो कर्म जो है कुछ खीण हो जाएंगे, इसके बाद में हम तुमको सही से बदल करके मुक्त शुद्ध सही दे करके तुमको नित्य दर्शन, अब तुम अवशिष्ट जीवन कीर्तन करते हुए कृष्ण नाम का बिना पर और सर्वत्र विचरण करो, समय अनुसार में काल आएगा, काल के सिर के ऊपर में पैर रख करके तुम हमारे पास में चला आए, तब नित्य दर्शन होगा, तुम सर्वत्र घूम जा सको। उन्होंने ऐसा ही किया, अब वो शोक मोह छोड़ करके निरंतर अश्रु प्रवाहित नेत्रों से बुद्ध बड़े से कृष्ण कीर्तन करते करते नारद मुनि बजाए बिना राधिका मन नाम राधिका रमन राधा गोविंद गोविंद दामो वर्मा धोती इत्यादि सब नामों का गायन करते हुए संसार में घूमने लगे। काल आया, समय आया, बस उसके सिर पर रख करके उन्होंने अलक्षित रूप में उस शरीर को बदल दिया और चिन्हय शरीर देकर के भगवान के निकट चले, पहले जिस रूप में होते उसी रूप में अब सर्वत्र तुम घूम विचरण करने लगे, कभी गोलोक में, कभी वृंदावन में, कभी नारायण लोक में, कभी भूपल में, कभी उस भूपल में, कभी वहां, और अपने हजारों रूप धारण करके हजारों कृष्ण के अवतारों की लीलाओं में उनकी सेवा करने लगे। कृष्ण कृष्ण जितना स्वरूप धारण करते हैं, राम नृसिंह कल्कि वामन, स्वर्ग में उपेंद्र, वैकुंठ में नारायण
अलग अलग ब्रह्मांडों में
अलग अलग ब्रह्मांडों में सब जगह एक एक रूप उनका होकर के उन सब की सेवा करने लगा।
नारद जी का
नारद जी
सब लीलाओं के साथ
सब लीलाओं नंद बाबा एक नहीं है यशोदा जी जितने ब्रह्मांड में लीलाएं हो रही है वहां पर एक एक कृष्ण के साथ में एक एक नंद यशोदा जी का स्वरूप है और सभी एक है।
अप्रकट में तो चल ही रहे वो भी
वही तो अप्रकट में तो चल ही रहा है वहां पर कहीं है यहां पर भी है सर्वत्र है उनका ये एक तरह से काय रूप समझो जैसे कृष्ण का अवतार होता है विविध प्रकार से 16,000 गोपियों के साथ में 16,000 रूप धारण कर लिया और सब अपना स्वतंत्र रूप में है किसी के आश्रित कोई रूप नहीं ये एक हाथ उठाएगा तो सभी उठाएंगे
योगी जैसा
लोगों का ऐसा होता है जब भी 10 रूप बनाएंगे तो 10 रूप एक जो करेगा वो सभी रूप करेंगे ऐसा नहीं।
नारद जी का भी ऐसा नहीं है और कृष्ण का भी ऐसा नहीं कोई अंतर है इन दोनों के
विस्तार ये जीव तत्व है और वो भगवान है ये दास है वो प्रभु है
कलयुग में जिस
तो फिर इनके
गुला में तो अपर में भी नारद जी के वो हैं तो कलयुग में भी आते हैं
उन्होंने किसी न किसी महाप्रभु जी थे तो उनके समय में तो श्रीवास
तो महाराज
बाबू नारद जी यहाँ पर हो रहे आ रहे हैं
ब्रह्मा जी उनके गुरु हैं ये साधक के समझाने के लिए
समझाने के लिए नारद से भी बहुत होता है नारद चले जाएंगे जो लोग वृंदावन में सब में नारायण लोक में ब्रह्मा जी अभी नहीं जाए किंतु इसके पहले वाले ब्रह्मा जी थे कितने करोड़ों ब्रह्मा तो बदल गए हैं वो लोग तो पहुंच गए होंगे ब्रह्मा तो पद है नाम नहीं है इनके अलग अलग नाम है राष्ट्रपति नाम नहीं है राष्ट्रपति कौन सा राष्ट्रपति भारत को स्वाधीन कराने के समय में पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे
राजेंद्र
प्रसाद तो अभी कौन है
शंकरदयाल
शर्मा और वो दोनों एक हैं
नहीं
ऐसे जिस ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद जी हुए थे अब वही थोड़े ब्रह्मा जी हैं कितने लाखों बदल गए
जी हमारी जो परंपरा के जो है आदि ब्रह्मा जी
तो हम लोग इस पद से ले लेते हैं जो कोई जी जो इस पद पर अभी है वही हमारे परंपरा में है जो कोई भी ब्रह्मा रहेंगे हम लोगों के वो परंपरा में है क्योंकि कृष्ण से निकले हैं ना और कृष्ण ने उनको मंत्र दिया है कृष्ण की उन्होंने आराधना की है वो जीव तत्व है शंकर जी विष्णु तत्व होने के नाते हम लोगों ने उनको ग्रहण नहीं किया है उनको ग्रहण किया क्योंकि वो गुरु के रूप में उनको माना किनको शंकर जी को भी गुरु के रूप में।
महाराज जी जो शिवरात्रि जो व्रत होता है इसमें जो शिव जी हैं विषय तत्व में है और ऐसे मैंने पढ़ा था परम गुरु जी ने एक जगह कहा था कि अशिव तत्व में हम किसी का व्रत नहीं करते उपवास नहीं करते नहीं तो समझ जितने गुरु हैं हमारे अशिव तत्व हैं जितने तो उसमें क्या
अरे ये सब बातें समझने की होती है मैं विश्व को मैं किसी की बात नहीं मानता तो इसका मतलब अपने गुरु को और भगवान को कृष्ण को नहीं मानते अभी कह दिया जैसे हम अपने गुरु को छोड़ करके और कृष्ण को छोड़ करके नहीं मानेंगे तो गौरांग प्रभु की बात नहीं मानेंगे और उन उन्होंने कहा अच्छा हाँ उनको मान लें तो नित्यानंद को क्या करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर के ये सब कहने की समझने की बात है इस रूप में समझना चाहिए हमने कभी कह दिया क्रोधित होकर के मैं ब्रह्मा की बात नहीं मानता इसका मतलब वो ब्रह्मा जी की बात नहीं मानता ब्रह्मा जी जैसे और लोग हैं कोई भी हो उनकी बात नहीं मानता जब ये कहेंगे जो भक्ति को छोड़ दो और जागतिक नैतिकता को ग्रहण करो शुद्ध भक्ति को छोड़ दो महाप्रभु जी विचार को लेकर के देने के लिए आए थे उसको छोड़ो और ये समाज में रह करके रुपया पैसा लाओ और मस्जिद और मंदिर बनाओ और ये सब काम में लगाओ अपने जीवन को यही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है कहते तो जो ये ब्रह्मा जी आकर के कहेंगे तो भी नहीं मानेंगे
उसका मतलब अपने दृढ़ता दिखला रहे हैं
भक्ति के प्रति।
ब्रह्मा जी बने हैं ना हमारे रघुनाथ दास को स्वामी बने हैं।
रघुनाथ दास को स्वामी जी
क्यों क्यों बने हैं? हम तो सृष्टि की रघुनाथ जी सृष्टि कर रहे हैं हम तो शंकर जी की बात नहीं मानेंगे रघुनाथ जी की मानेंगे। तो इसका मतलब नहीं है शंकर जी को मैं नहीं मान अवज्ञा कर रहा हूं, ये बात नहीं। शंकर जी ने जिस भावना से उनकी उपासना की है साधारण दृष्टि में हम उन्हें लेकर के रघुनाथ दास के विचारों को देते हैं। यहां पर शंकर जी से सहमत है उनके विचारों को देते हैं। जो ब्रह्मा जी रुद्र शंकर जी रुद्र होकर के आए हैं जो अद्वैतवादी शंकर के रूप में आए हैं उनके विचारों को तब उनका आदर करते हैं। ये प्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए वैसा रूप धारण करके वैसा भी किया। साधारण आदमी नहीं समझेंगे, जो जिस अधिकार में है वैसे ही बात समझेगा, कंफ्यूजन उसको हो जाएगा। भगवान से इच्छा प्रकाश किया और भगवान उनको मोहनी रूप दिखाया।
नहीं नहीं ये वो नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गोपेश्वर वाली बात करें उसको गोपेश्वर की जगह शिव मोहनी रूप शब्द इस्तेमाल कर देंगे कि इन्होंने रास में भी आए थे
तो कौन है ठीक से उन्हीं को बोल दीजिए।
बोलिए
ऐसा है कि हमारे शिव मोहनी रूप के अंदर भगवान
गोपेश्वर मोहनी रूप में वो गोपेश्वर नहीं हुए हैं। मोहनी तो वह रूप है भगवान का जिसमें देवताओं को अमृत बांटा था और असुरों को वंचित किया तो वो शंकर जी ने पीछे से उसी को दर्शन करने के लिए लालसा की और उनको उन्होंने रूप दिखाया और शंकर इतने तत्वज्ञानी होने पर भी इतने उच्च कोटि के भक्त होने पर भी मुग्ध होकर के उनके मोहनी के पीछे पीछे चले। और ये जो गोपेश्वर जो रूप है वो कृष्ण रासलीला में बंसी बटने वृंदावन में जमुना के किनारे वहां पर उपस्थित थे, अकेले थे, उन्होंने अभिलाषा की रास हो। रास होगा दृष्टा कौन होगा? एक दृष्टा तो होना चाहिए, दृष्टा नहीं होने से फिर रस की कमी हो जाएगी, इसलिए कोई दृष्टा की योग्य होना चाहिए। तो उनके दाहिने अंग से बाएं अंग से सुमती राधिका जी हुई और उनके साथ में करोड़ों उनकी काय भी गोटियां हुई। अब ये रासलीला के उपकरण एक कृष्ण हुए और एक गोटियां राधा जी इत्यादि हुई। स्थल हुआ चिन्ह में भूमि बंसी वक्त और दृष्टा कौन होगा? शंकर जैसा सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति विश्व भर में ब्रह्मा भी नहीं जो अपने पर काबू कर सके और जिसकी वो प्रशंसा कर सके जगत में उसको दिखला सके। इसलिए उनके दाहिने अंग से शिवजी पैदा हुए। कौन शिवजी हुए? सदाशिव, जो सब समय सदाशिव महाविष्णु के रूप में गोलोक उसके नारायण धाम के नीचे
महेश धाम
में वो प्रतिष्ठित है।
कैलाश धाम में नहीं करेंगे?
नहीं,
महेश धाम
कैलाश धाम वाले जो शंकर हैं उनके वो अंश कला है।
अंश कला तो कैलाश धाम ब्रह्मांड के अंदर है
अंदर और वो है नाम नित्य है। इसलिए दृष्टा के रूप में जो जगत में इस चीज को प्रकाश कर सके और जीवों को घर में आकृष्ट कर सके, ये सरस को दिया जा सके, इसलिए भ्रष्टाचारी उनको और उनको रखा दूर। अब दूर रख करके और इधर में अराषाण हुआ, ये एक रूप है। दूसरा इसमें एक रूप है, वो जो वो निकले गोपी सर, इन्होंने वो जो कैलाश वाले जो शंकर हैं वो उसमें अविष्ट हो गए इन्होंने, और साधकों को दिखलाने के लिए उन्होंने योग माया की उपासना की। योग माया की उपासना पर प्रकट हुए, वो योग माया प्रकट हुई और उनसे कहा क्या चाहते हो ब्रह्म ब्रूही। उन्होंने कहा कि मैं रासस्थली का दर्शन करना चाहता हूं, यहां पर रास होता है, उस रास को देखना चाहता, पुरुष रूप में नहीं जा सकते, इसलिए उनको पकड़ करके ब्रह्म हर्द में डुबा दिया। वो रंगनाथ जी के मंदिर के पास में है,
ब्रह्मकुंड,
उसमें लेकर के डुबा दिया। अब डुबाने के बाद में परम सुंदरी गोपी हो गई
जी,
तो अभी कुछ गड़बड़ी थी रास में, तो वो गई, भेज तो दिया, किंतु ये नहीं बताया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पति कौन है, शादी नहीं हुई, गोपियों के गर्भ से जन्म नहीं लिया,
गोपी नहीं बने थे,
अभी गोपी नहीं, अंदर से नहीं गोपी बने थे, कुछ भाव था जो मैं शंकर हूं वही या महाविष्णु हूं,
स्नान करके आ रहा,
इसलिए वहां पर उनको रख दिया जो यहीं से लीला देखना, उसके ईशान कोण में वो गोपीश्वर महादेव का मंदिर पड़ता, वहीं पर वहीं झाड़ियों में गुलमों में छिप करके इधर रास देख रहे हैं। कृष्ण ने कहा आज रास में आनंद नहीं आ रहा है, गोपियों ने कहा हमें भी ये नहीं रहा है, अब निरस के हो गया। उन्होंने कहा जो कोई अयोग्य दृष्टा है यहां, जिसके अंदर में कुछ अभी शुद्धि नहीं हुई है और रस उसके अंदर में नहीं है, वो व्यक्ति कोई देख रहा है, अब ढूंढने लगे सब, लाखों करोड़ों गोपियां और कृष्ण स्वयं ढूंढने लगे। थोड़ी देर के दूर में उन्होंने देखा एक गोपी वहां पर बैठी हुई है तो बड़ी सुंदरी, सब प्रकार से अलंकृत है। उन्होंने झट तो कहीं एकदम नहीं है, बिल्कुल आज से कभी पहले देखा नहीं, बस गोपी ने पहले तुम कहां से रहती हो, तुम्हारा कौन सा गांव है,
पति कौन
है, तुम्हारा खसम में पति का नाम क्या है, तुम किसकी पत्नी हो, कौन से गोप से शादी है, कौन गांव में तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारी कौन ननद है, कौन क्या है, कुछ नहीं बात, तुम्हारे बाप का नाम क्या, तुम्हारी मैया का नाम क्या,
अच्छा बता दी,
और जब नहीं बतलाया तो कहा यही है वो, तुम यहां पर क्यों आई, कैसे आई, बस गुलचे से मार करके उसका गला फुला दिया, गाल लाल कर दिया, उस महाविष्णु के लिए गोपीश्वर महादेव के
रोने लगे,
वो रोने लगे, तब तक फिर उन्होंने योग माया को आस्मरण किया, योग माया आई, उन्होंने कहा जो हमने इस पर कृपा की थी आप लोग कृपा कर, ये इस रस का लोभी है अनर्थ, अब आप कृपा करके इसके अनर्थों को भी दूर कर दीजिए, और इसका नाम आज से रख दिया जाए गोपीश्वरी, गोपी है जिनकी ईश्वरी है, इस रूप में रखा। और कृष्ण का जा अच्छा अब ये तुम्हारा काम रहेगा, उस वृंदावन में ब्रजमंडल में जो कोई पधारेगा उसके लिए तुम प्रदर्शन करेंगे, जब तक तुम्हारा आदेश नहीं होगा, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी, तब तक ये गोपी भाव से कोई भी इस ब्रजमंडल में नहीं प्रवेश कर सकता, इसलिए उस समय से वृंदावन धाम के गेट कीपर जैसे रहे। यदि कोई प्रवेश करना चाहता है साधन में तो उनके शरणागत होकर से प्रार्थना करने पर वो उसको एंट्रेंस का अधिकार देते हैं, तब से उनका नाम हुआ गोपीश्वर। साधारण लोगों के नजर में गोपीश्वर महादेव और भक्तों की दृष्टि में वो गोपेश्वरी हो गए। ये है आपका संदेह कुछ इसमें कुछ ठीक रहा? ठीक रहा नहीं बतलाया कृष्ण का प्रेम मैं पहले चित्त को निर्मल कर देता हूं। संसारिक कितने भी अनर्थ दोष अपराध जो आत्मा को मलिन बनाए हुए है ऊपर से मन को मलिन बनाए हुए है उसको ये धो पोछ करके साफ कर देता है, जिसमें अपना प्रतिबिंब और कृष्ण का प्रतिबिंब उनके रिलेशन का प्रतिबिंब उसमें रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद में जो जो ये प्रक्रियाएं आरंभ होती चलती है उसी के अनुरूप में संसार की जितनी आग है दुखों की लपटें ये सभी शोक मोह भय ये सब धीरे धीरे दूर हो जाता है। जितना ही नाम शुद्ध होता जाएगा उतना उतने ही कृष्ण की कृपा बरसेगी और उनके कृपा से जितने शुभ हैं हमारे हृदय में पड़ सकते हैं। तो अनर्थ दूर होना ही एक शुभ है किंतु साथ साथ में कृष्ण की भक्ति का वो जो भक्ति है अब वो निष्ठा के रूप में आएगी। खिली फिर पूरी खिल जाती है उसमें सुगंध सब भर जाता है उसमें मधु आ जाता है और जगत को अपने ये सुंदर सुगंध से भर देती है। ऐसे ही नाम की कलिका पहले उत्पन्न होती है इसके बाद में तो कुछ विकसित होती है इसके बाद में और कुछ विकसित हो जाती है अर्थात तो भगवान का पहले नाम करते 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 भगवान का रूप फिर उनका परिकर के समेत और फिर उनके लीला परिकरों का वो दर्शन करते हैं। यहां तक तो श्रेयस्तव चंद्रिका अब इसके बाद में चंद्रिका वितरण दिव्या बहु जीवन भक्ति को इतना प्रकाशित कर देता है कि राधा जी की दासी होने की भी लालसा उसमें जगा देता है। अभी हुआ नहीं वो पूरा लालसा तो जगा देती है बिना नाम के ये नहीं होगा ब्रज के भावों को उसके अंदर में जिसका अधिकार है वैसे उसको जगा देगा। उसके बाद में प्रतिक्षण आनंद की लहरें आएंगी आनंद की लहरें मैंने कल थोड़ा सी उपमा दी थी जिसमें कृष्ण का रूप देखा कृष्ण के लीला परिकर देखा कोई विचित्र चीज देखी जैसे उद्धव जी वहां पर तपस्या कर रहे हैं उद्धव कुंड पर गोवर्धन पर और उस समय में महाराज दिल्ली वाले अर्जुन के परीक्षित महाराज बज्रनाभ इत्यादि आए और गोपियां कृष्ण की महिषियां सब आई उसमें रुक्मिणी इत्यादि भी आए और वो आकर के इनसे वहीं आकर के उनको देखने की लालसा की उन लोगों ने कीर्तन आरंभ किया उद्धव जी उसमें प्रकट हो गए और उद्धव जी ने उनके साथ में कीर्तन आरंभ किया तो राधा कृष्ण एकदम पूरा परिकर ही वहां पर ये कुछ समय तक ये दृश्य रहा इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में अंतर ध्यान हो गया।
परीक्षित महाराज उसमें थे
जय भर में बतला है कौन बाबा जी थे परमहंस बाबा जी परिणाम करते 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 सवेरे में उन्होंने निशांत लीला का जितना लीला है वो सब देखा और अपने किसी किंकरी को कह रहे हैं
गंदगी
और अमन मंजरी इस कखटी को यानी ये बंदरी को चुप कराओ नहीं तो हमारे राधा कृष्ण की नींद टूट रही है। और थोड़ी देर के बाद में जब बाह्य भाव आया तो रोने लगे लोट पोट करने लगे वो कुछ समय के लिए दृश्य देखा। कभी कभी ऐसा कोई भाव चुप्त भक्त कृष्ण की लीलाओं को दर्शन करता है अच्छा यहाँ तक तो हो गया आनंदानुभूति वर्धनम प्रतिपदम, ये साधक अवस्था में ही हुआ। इसके बाद में उसके आत्मा को इस जगत से हटा देते हैं, उसके शरीर को दूर कर करके रिक्त चिन्ह शरीर देकर के दो वृंदावन में ले जाते हैं और वहां कृष्ण की सेवा में उसे नियुक्त करते हैं। वहां पर हो गया क्या, नित्य काल के लिए वो प्रेम रूपी समुद्र में निमज्जित हो जाता है।
वहां वो आनंदानुभूति का
आनंदानुभूति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम इसी साधक शरीर में भावावस्था में, और उसके बाद में तब उसको निमज्जित कर देता है मैंने लिंग शरीर को। ये हमारा लिंग शरीर है, स्थूल शरीर यह है, लिंग शरीर मन बुद्धि अहंकार का, इसको भी दूर करके और उसको गोलोक वृंदावन में कृष्ण की समीप में उसकी स्थिति करा देता है। ये नाम ऐसा है, प्रारंभ से चित्त दर्पण से माध्यम से और कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने तक गोलोक वृंदावन में, यह ऐसा नाम। महाप्रभु जी रो रो करके कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्प्रार्थिता निमत स्मरणीन काल एतादृशी तौ कृपा, एतादृशी तौ कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम इदृशम विहाजन अनुराग। ओ नाम रूपी सूर्य में इतनी शक्ति है, नाम में भगवान की जितनी शक्ति भगवान में है नाम में भी है। यहां तक यह नाम दीक्षा और पुरस्कार इत्यादि की अपेक्षा नहीं रखता। दीक्षा मैंने क्या, जो गुरु जी दीक्षा देते हैं
पंच रत्न की दीक्षा, वो पंच रत्न दीक्षा के ये अधीन नहीं
है। पुरस्कार इत्यादि जो कराया जाता है, पुरस्कार आप लोग शायद नहीं किया तो ना मंत्रों में या दूसरे मंत्रों में ये होता है, उसमें पांच चीजें होती हैं, उसका संकल्प लेकर के पूजा करनी होती है। तो इस तरह से ये नाम में सिद्ध मंत्र में इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारे संप्रदाय में सिद्ध मंत्र है, इसलिए पुरुषार्थ, इसलिए वहां पर कहा शास्त्र ने कहा इसमें दीक्षा और पुरुषार्थ की भी कोई जरूरत। महाप्रभु गए कहा जैसे तुम लोग हर नाम करो और ज्यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आप लोग स्वयं हर नाम करना और दूसरे जिसको भी देखना अपने घर वालों को गांव वालों को जाति वालों को बाहर वालों जो सब पशु पक्षी कीट में उसको ये कृष्ण नाम सुनाना। वो लोग दूसरे से जब मिलते तो यही कहते जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अब वो जिसको कह रहा बोला ये तुम कृष्ण का उपदेश करना और अपने आप कृष्ण नाम करना। इस तरह से कुछ दिनों में ही सारे दक्षिण भारत को या जहां जहां गए सबको वैष्णव किया। महाप्रभु ने किसी को दीक्षा नहीं दिया, वहां पर स्वयं वक्ता हो महाप्रभु जी कृपा करने वाले हो, वहां पर ये दीक्षा की भी कोई आवश्यकता है। यदि कोई महापुरुष मिल गया, कोई महापुरुष नारद जी मिल गए, रूप सनातन मिल गए और कहा तुम कृष्ण नाम करो, हमारे दीक्षा बाकी रही ऐसे महापुरुष। आज जो दिशा में लटपटाया हुआ खुद है अर्थ का दास और संसारी कामनाएं दास ने जिनके अंदर में है, वो आग जला करके भी उपंचरात्रिक दीक्षा दे कर रहा है और उनको दीक्षा देवा अभिनय कर रहा है, उसको खुद ही तो विश्वास नहीं उसमें। अर्थ के लिए यदि कोई करे, संसारिक इच्छा के लिए करे, शुद्ध भक्ति का वो जो उद्देश्य कृष्ण की का प्रेम पाना वो न रहे और ये अनुष्ठान हो और दो दिन के बाद में फिर इसको छोड़ करके गला माला तोड़ करके घंटी माला और ये सब तोड़ करके फिर संसार में रम जाता है, फिर वही मांस मछली ये सब खाने लगता है, तो क्या हुआ। इसलिए ये शुद्ध नाम महाप्रभु जी कह रहे हैं, ये शुद्ध नाम जो है कृष्ण नाम स्वयं समस्त शक्ति के आधार है, समस्त रसों के आधार है। इसमें नियमित स्मरणीन काल, इसके स्मरण में इस काल की भी जरूरत नहीं है। काल माने क्या भाई, अभी रात है भरात है और अभी सो रहे हैं, उठ करके अभी स्नान नहीं किया, कुछ नहीं किया, दत्वन नहीं किया, टट्टी फट्टी नहीं गए, कैसे नाम को करें। खाट पर पलंग पर बैठे हुए हैं, रजाई में बैठे हुए, खूब ठंड लग रही है, कैसे करें? नहीं, स्मरणीय निकाल काल की भी कोई अपेक्षा नहीं रखी और दीक्षा मंत्र इत्यादि की भी अपेक्षा नहीं की। जीवा पर नाम स्पर्श होने से ही ये नाम है, जिसमें कोई दान पुण्य की अभी प्रतीक्षा नहीं हुई, किसी भी चीज की अपेक्षा। स्त्री पुरुष पुत्र ये सब क्या, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई काफी नहीं रखा। और एक तरफ में आपका नाम उदार इतना, और दूसरी तरफ में हमारी इसमें रुचि नहीं हुई, कर रहा हूं ना किंतु रुचि नहीं। ये हमारा दुर्दैव है, दुर्दैव मैंने हमारा ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कैसे आपने समझा जी हमारी रुचि नहीं है? तो रुचि में हम तो देख ही रहे हैं, हम संसार को और नीति को अधिक मान्यता दे रहे हैं। कृष्ण प्रेम, कृष्ण की सेवा मिले, आत्मा का कल्याण हो, इस पर हम रुचि नहीं लगा रहे हैं। स्वाभाविक रूप में कृष्ण के नाम के रूप पर की रुचि नहीं, यह हमारा दुर्भाग्य है। यदि हम हे नाम गए, हमने इतना दिन तक नाम किया और हमारी नौकरी नहीं मिली, हमारी शादी नहीं हुई, हमारी लगी हुई नौकरी छूट गई, हमारा बिजनेस ठीक नहीं हो रहा है, और उसका नाम का फल समझा जैसे ये कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए नाम में कोई शक्ति नहीं। यदि थोड़ा सा अर्थ बढ़ जाए, अच्छी नौकरी आमदनी होने लगे, तो बड़ी रुचि आती है। वो रुचि नहीं है, वो धन के प्रति उसकी रुचि है। नहीं होने से नहीं हो रहा है, ये समझिए कि हमारा दुर्दैव है। उसका लक्षण करना चाहिए, ये नाम लेते ही कृष्ण नाम इतना मधुर है, उसे समस्त इच्छाएं दूर हो जाएंगी संसारी।
क्या समझना चाहिए? आखिर अपराध है कुछ, कोटि जन्म यदि करें श्रवण कीर्तन, एक जन्म नहीं कोटि जन्म तक अर्थ की लालसा, संसारिक वासनाओं की लालसा लेकर के और नाम करे तो नहीं होगा।
ये नाम वासना काटेगा नहीं?
कौन
नाम कर रहा है तो उससे वो वासना कटेगी?
तो सत्संग भी तो चाहिए। हाँ। वो तो कटाएगा, पानी की एक धार है, पानी वहां पर पहुंचने पर पौधों का सिंचन होने से पौधे बढ़ेंगे, और बीच में वो नाली कट गई तो इसमें पानी पहुंचा नहीं, तो इसमें पानी का क्या दोष रहा है? नाली कट गई ना, इसलिए नाम के प्रभाव से नाम क्यों नहीं करेगा? किंतु नाम को अर्थात तो धारा को उस खेत तक पहुंचना है ना, और बीच में पानी कट गया और दूसरी जगह बह गया और दूसरी जगह पानी ही नहीं मिला, तो फिर कैसे होगा? इसलिए चैतन्य चैतामृत में कहते हैं, या फकीर स्वामी सिंधु में, या जीव गोस्वामी कह रहे हैं, नाम ले रहे हैं किंतु यदि शुद्ध नाम नहीं हम कर रहे तो उपशाखा में ये पानी पड़ता है। उपशाखा क्या है? जैसे कोई खेत है, उसमें घास है, पानी से सिंचन किया जाए, और गेहूं का पौधा का बीज भी है, तो गेहूं का पौधा खुद नरम होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, घास से बड़ी जबरदस्त होती है, वो पानी खुद ग्रहण करके उस पौधे तक नहीं पहुंचती। इधर कुछ दिनों पर वो पीला हो जाता है, मर जाता है, और ये घासें बढ़ जाती है। उसमें कहते हैं वैष्णव अपराध, निंदा, अवज्ञा और जितने प्रकार के ये हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, लाभ मैंने क्या सांसारिक चीजों का पाना, लाभ कोई भी शारीरिक ये जितने संस्कार के ये है, जैसे कि हमारा ये धन बढ़ जाए, हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमारी खूब संसार में प्रतिष्ठा हो, ये सब जितने ये उपशाखा है, इसलिए मालिक पहले इसका छेदन करता है और उनको मूल से उखाड़ करके फेंक देता है, और तब वो पानी उस मूल पौधे को पहुंचती है, तब ये मूल शाखा जाए गोल वृंदावन। ये मूल शाखा जो है भक्ति की, ये वहां तक पहुंचे, और बीच में जब इसका पानी दूसरे शाखाओं ने ले लिया है, आप लोग तो गृहस्थी मैंने खेती नहीं की, एक लौकिक होती है, इसमें लौकिक की बेल होती है, उस बेल को बढ़ा बनाया, वो बेल कुछ बढ़ी, उसके लिए मंच लगाते हैं, मंच बनाते हैं जिसके ऊपर में चढ़ती है और उसमें से झूले रहते हैं, उसके फल सब झूलते हैं। तो वो जबकि बढ़ रही है प्रथम अवस्था में, तो उसके आसपास की घासें हैं जो कि मूलची जो आप सींचेंगे वो उसको पी लेती है, तो वो फिर ऊपर नहीं बढ़ेगी। और एक उपशाखा होती है, उसके जड़ से ही कुछ शाखाएं निकलती हैं,
जड़ से ही पर वो लौकी नहीं है,
लौकी है,
लौकी है
अच्छा, क्योंकि यदि चार पांच शाखाएं हैं तो यदि वो बढ़ने लगी तो ये मूल जो शाखा थी वो नहीं बढ़ेगी, अब वो पांचों छह बढ़ रही है और वो बीच में ही मुरझा करके खत्म हो जाएंगे। इसलिए तत्व वाली उस सबको छेदन करके एक को रखता है उनमें से, जो बहुत दर्द को पहुंच करके वो पहुंची। ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा एक होती है कूटी नाटी, कूटी नाटी मैंने कु जितनी है, कुसंग कु खाद्य कुसंग कुवार्ता जितनी कु चीजें हैं,
कोटि नीति
कोटि नीति इत्यादि जितनी भी चीजें हैं ये कु और ना टी माने होता है समूह, जितने ना समूह है जितने कु समूह है, व्यभिचार इत्यादि सभी इसी के अंतर्गत है, झूठ बोलना चोरी करना पाप करना ये सब इसके अंदर, जितने कु है ये कु को दूर रखना होगा, और ना को भी नाटी माने ना का समूह उसको भी दूर, ना माने क्या जिसको निषेध किया गया, कुसंग में मत जाओ, ठाकुर जी का अर्पित प्रसाद पाओ, सत्संग में जाओ, बिना सत्संग के भक्ति नहीं होगी, ये नाम का भी प्रकाश नहीं हो, क्योंकि ये समर्पित कीर्तन तो करना पड़ेगा, उनसे करना पड़ेगा, तो बस चर्चा की जरूरत नहीं है, विचार की भी जरूरत नहीं है, किंतु सत्संग की जरूरत है, उसमें पानी इसमें सिंचन होता है, बेल आगे बढ़ेगी। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हमारा तो गरीब है, हमारी रुचि नहीं, क्यों नहीं हो रहा, महाप्रभु जी बतला रहे हैं कुछ कारण, ये जो कु है और ना है इसको हम लोग अधिक रखा है, कु को और ना को जो निषेध है इनको दूर रख करके और भी एक चीज की जरूरत, भक्ति नहीं है किंतु भक्ति की पोषिका वृत्ति है, क्या अभिमान ना आने पाए, इसलिए तुना दपि सुने जेना सुन दे, यदि अभिमान रहेगा कि मैं तुमसे बलवान हूं, मैं तुमसे धनवान हूं, मैं तुमसे रूपवान हूं, मैं भक्त हूं किसी भी चीज में, अच्छा जितनी भी समस्या है जल जगत में या चीज जगत में ये मूल है, यही हम दिन ही नहीं दिखाते, हम दूसरों को अपने से नीच समझते हैं, यदि ये पुरुष सोचे ये नारियां हमसे बहुत निकृष्ट हैं, हम कुछ सब कुछ कमा रहे हैं मैं कर रहा हूं, और स्त्रियां केवल दासी के रूप में हैं, हमारे मन को प्रसन्न करने के लिए सब प्रकार से सेवा करेंगे और उसको नीच समझेंगे, या कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं कि मान लें कि कहीं पर प्रिंसिपल हो गई, कहीं युग पद पर पहुंच गई, कोई मंत्री बन गई, कोई कुछ हो गई, अपने पतियों को अवज्ञा करती है, ये सब नहीं, ये भी नहीं कि ये भी छोड़ना है, इसलिए अभिमान छोड़ने के लिए परमार्थ में और लौकिक जगत में दोनों जगत जब तुना दपि सुने जी, मरने का कोई ठीक नहीं, जो कम मर जाएंगे बड़ा अभिमान हो रहा है बल का, अभी पांच टट्टी हो जाए बस बल कहां निकल जाएगा, रूप भी निकल जाएगा, मच्छी भी शरीर पर, अभी कोई एक्सीडेंट हो गया हाथ मुख ये सब निकल गए, उसमें कोई गारंटी ये नहीं होगा, ये भगवान की कृपा है जब तक हम लोग ये सब हैं, इसलिए दिन हम लोगों को अत्यंत सुदृढ़ बनना पड़ेगा, हमारा स्वरूप नहीं है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए भगवान के गुण हैं किंतु छोटे छोटे रूप में है, इसलिए कभी भी हम किसी तरफ में भी निहक सकते हैं, हम अपने अंदर से क्रोध को निकालने में भी समर्थ नहीं है, एक लालसा जग गई ना कोई, कैसी लालसा? अजामिल गया वन में, सदाचारी ब्राह्मण, पक्का सनातनी, माता पिता का भक्त और अच्छे घर में खानदान में अच्छी लड़की के साथ में शादी, और दुष्ट लोगों को उन्होंने शराब मदिरा पीते हुए देख करके और उनके कुछ स्टाइल को देख करके अपने मन पर काबू नहीं रख सका। आप लोग भी देखेंगे हृदय पर हाथ रख करके जो आपने सब इच्छाओं को दबा दिया, काम को, क्रोध को, लोभ को, इसलिए तिनादपि सुनेच। जब तक तिनादपि सुनेच नहीं होंगे यह नाम स्फूर्ति नहीं होगी। परोपि सहिष्णुना, सहिष्णु बनना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर जैसा 22 बाजारों में पीट करके दोस्त कर दिया, वो करें कि इनका कल, हे प्रभु इनका कल्याण करें, कभी नहीं कहे प्रभु इनका सर्वनाश करें, भागे नहीं। प्रहलाद महाराज भी मृत्यु से भागे नहीं, अभी मीराबाई भी नहीं भागी, बीज दिया पी लिया, उसके लिए अमृत बन गया, चरणामृत दिया बीज मिलाकर, चरणामृत पी लिया सब। सांप लगा देता जी ये सालग्राम है शिला, जरा खुलना अपने घर में एकांत में, तो समझा जैसे जब खोलेगी तहक बसेगा, तो सचमुच में वो जब खोली तो वो सालग्राम। पहले रोने भी रो करके जो मेरे प्रिय थी मेरे तो वो घर गोपाल दूर शरण कही, और खोलती गई खोलते खोलते देखा जिसको सालग्राम सहिष्णु होना होगा। सबके वशीभूत ये नहीं है सहिष्णु होना, भगवान के लिए इसको भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, सबकी बातें सही पड़ेगी। कितने दुख हैं, अपमान है, इनको कृष्ण के भक्ति के लिए हम, हमारी भक्ति बढ़े इसलिए हमारा चित्त संचल हो, इसलिए सह लेना पड़ेगा। उपमा दिया तरोरोपी, तरोरोपी मैंने वृक्ष से भी अधिक बढ़ करके सहिष्णुता होगी, जैसे पेड़ काटने से नहीं बोलता, पेड़ काटने से नहीं बोलता, पानी भी पीने के लिए नहीं मांगता, मारो तो भी फल देता है, उसकी चेयर कुर्सी सब कुछ बना लो, ठंडे में उसको जला करके ताप लो, उसकी टहनी को काट लो, कभी कुछ नहीं। उस समय भी उसकी छाया ले जाओ, एक टहनी काट करके और उसी जगह आदमी दम ले रहा है, सुस्ता रहा है और छाया में उसकी पड़ा है, ये नहीं काट, और उसमें उसकी डाल को काट करके उसी का फल खाता। तो भक्ति को चाहने वाले लोगों को इतना कुर्बानी करने के लिए तैयार रहना होगा। संसार में तरह तरह के कष्ट होंगे, शारीरिक कष्ट होंगे, मान अपमान होगा, सहना भक्ति के लिए, भक्ति के लिए जरूरत होगी परिवार को, देश को, राष्ट्र को, विश्व को, सबको छोड़ देंगे इस समय भक्ति के लिए। यह है सही सुनता, ऐसा नहीं कि क्या निकाल जैसे भाई भक्ति छोड़ दो, घर में ये अंडे गोश्त खाओ, ये बेकार का ये समप करो, तो अच्छा अच्छा ठीक है भक्ति, उसमें सहिष्णुता होनी चाहिए, तब तो कृष्ण रक्षा करें। और अमानिना, मान की लालसा मत करो, नंदन ने कुछ ठठोली कर दी, कुछ बात कर दी, सास ने कुछ कर दी, तुम्हारे माँ बाप को मैं जानती हूँ, उसी से सब पैदा हुई, तो तुमको कैसे ये घर का काम आए, उसका दिया बस। हाँ यदि भक्ति के लिए कुछ कहे वो नहीं सहेंगे, सहेंगे मैंने क्या, उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे, उसको मारना कितना नहीं है, मारना कितने की कोई जरूरत नहीं, ना उसे झगड़ा करने की जरूरत है, या घर में आग लगा दिया, ये सब
महाराज जी, उसका फिर त्याग तो करना चाहिए
ना,
अलग बैठ जाना चाहिए, त्याग कर
एक
जो घर है ये सब,
मैंने अपने असल घर के लिए, ये घर
असल घर के लिए अपना अलग बैठना चाहिए, असल घर
चेष्टा करो, किंतु घृणा किसी से नहीं करना है, यदि वो भगवान का सत्संग हमको भजन में बाधा देता है, भजन नहीं करने देता है, तो इसलिए भागवत में कहा वो स्त्री स्त्री नहीं, वो पति पति नहीं, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, और उसके अलग अलग सब उदाहरण दिए, तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजव कंत प्रतिबंधन भय जग मंगल था,
जिनके प्रिय
न राम वेदी, जिनके प्रिय न कृष्ण श्रीमती राधिका, राधा और कृष्ण जिनके प्रिय नहीं, राम जिनके नहीं प्रिय है, तजव पिता प्रहलाद पिताजी ने प्रहलाद जी ने अपने पिता को जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु विभीषण ने अपने भाई को और भरत माता भरतपुर ने अपनी मैया को जिनके गोद से पैदा किए उनको छोड़ दिया और परि गुरु तजु परि महाराज ने अपने गुरु को क्या कर दिया गुरु कौन है किस लिए गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया किस लिए कृष्ण की भक्ति कृष्ण फाउंटेन थे जिन्हें वो हमारे पति हैं वही हमारे पुत्र हैं वही हमारे गुरु हैं वही हमारे बंधु हैं वही हमारे सब कुछ है उनके लिए प्रभु परम पद के लिए भक्ति के लिए ये सब यदि विरोधी हैं तो ठीक अविरोधी नहीं है तो उनके साथ मरा करके भजन करो विरोधी भी दो प्रकार के होते हैं एक तो अत्यंत हृण कष्ट जैसे विरोधी और एक होते हैं जिनको सहन सहती है सह सकते भजन नहीं करता है उनको सहने किंतु जब भगवत विरोधी हो तो उसे कोई सम्मान नहीं इसलिए कहते हैं अमानी ना मान देना दूसरों को सम्मान देना चाहिए अपने मन की लालसा नहीं रखनी चाहिए दूसरों को जथा योग्य जो गुण है उसलिए उसको सम्मान करें जब नहीं करते तो अपराध हो जाएगा महत अपराध इसलिए उसको सम्मान देंगे तो पशु पक्षी कीड़ी पतंग चींटी तक भगवान के ही दास दासी हैं भले ही अपने स्वरूप में नहीं है प्रतिष्ठित किंतु है तो सभी भगवान के दास है इसलिए उनको प्रणाम करना है जो ये कृष्ण के दास दास हैं इसके हृदय में भी भगवान है हम लोग तो कौन सी इत्यादि सभी को स्वरूपता प्रणाम करते हैं सबको नहीं तो तब कृष्ण की लीला ही नहीं होगी किंतु उसको नहीं ये नहीं जो तो जिसका मथा गया था शरीर महाराज देन कृष्ण का एकदम विरोधी था भक्तों का विरोधी था कंस को इसलिए कि कृष्ण कृष्ण की लीला में सहायक है कंस और कृष्ण का निरंतर स्मरण करता था हिरण्यकश्यप निरंतर उनका चिंतन करता था क्योंकि जय भी जय थे ये लोग
कृष्ण के बारे में
और चिंता सब छूट गई कृष्ण की चिंता करते करते उनका जितना जो अमर प्रसाद दूर हो गया और उसको मुक्ति मिल गई और सब चीजों से उसका अपनी पत्नी पर लड़कों पर संसार में प्रतिष्ठा पर उस सबसे ध्यान हट करके कृष्ण इसलिए वहां पर वो भाव भी वो शुद्ध कर दिया और कोई अभिलाषा ही कुछ नहीं ऐसे इधर मानी मानव होना भी जरूरत है दूसरों को जथा योग्य सम्मान देंगे अपने मान की नहीं ये चार गुण नहीं होने से भगवान का नाम की स्तुति नहीं होगी पिनाकृति सुनी इस प्रकार से रह करके भगवान का नाम करेंगे तब तो वो अंकुरित हो गए तो हरे नाम अंकुरित ही नहीं होगा अंकुरित में बाधा क्या है कोई इत्यादि सब तक दूर हो गया और न कभी रात भी दूर हो गया न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश रामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे हे प्रभु मैं आपका जो नाम ले रहा हूँ धन के लिए नहीं धन मैंने कहा यहाँ जो कुछ इस संसार जगत में हम अर्थ चाहते अर्थ माने इच्छा जिसके लिए इच्छा है वही हमारे लिए धन गो धन स्त्री धन पति धन ये सब जितने ये धन है खेती का धन पुत्र धन पुत्र रत्न पुत्री रत्नी ये सब उसमें है कन्या रत्न पैदा हुआ तो ये सब है और जो कुछ हम इच्छा विलास करते हैं वो सब आया कहते हैं कि न धनम कृष्ण कहते हैं जब हमारा बहुत नाम किया ये धन ले लो नहीं प्रभु ऐसा मत न जन्म पुत्र संतति कन्या इत्यादि स्त्री माता पिता सुंदर ये सब ले लो नहीं प्रभु ये सब न सुंदरी कविता अब स्त्री तो पहले दूसरे में आ गई अब यहाँ पर सुंदरी कविता मैंने विद्या ऐसी कविता जो सुंदर उसमें खिल उठ रहे हैं सब एक एक शब्द
सुंदरी स्त्री के लिए नहीं है
ना उसके लिए वो जैसे कविता सुंदरी जैसे ऐसे
ये जन्म में स्त्री आएगी स्त्री किसमें आएगी
न जन्म में स्त्री पुत्र परिवार सभी कुछ आ गया इसलिए यहाँ पर कविता सुंदरी आएगा
प्रशंसा में ऊंचे
मखेश्वरी त्रियेश्वरी शुभेश्वरी सूर्यश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके शिराधिके। ये अलंकार सब है, सुंदर कविता है। ऐसी चिंता नहीं कि आप झट झट करके सुंदर एकदम शब्द निकल रहे हैं, लोग देख करके प्रभावित। कभी कभी देखते होंगे आप लोग ऐसे ऐसे भी वक्ता होते हैं जो उनके वक्ता में कोई भी सार नहीं है वक्तित्व में, किंतु उनके शब्द जैसे ऐसे सुंदर निकल रहे हैं झट 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 करके, लोग श्रोता लोग मुग्ध हो जाते हैं। सुंदर कोई कविता पाठ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सब मुशाहराए होते हैं उनके, क्या जिसमें कि बड़े बड़े लोग कलाकार आते हैं अपनी कविता सुना, ये उसे बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है।
वैसे तो कई भागवत कथा या रामायण कथा बहुत अच्छे वक्ता है,
बहुत अच्छा स्वयं यही पालन करते भक्ति, बहुत से ऐसे हैं। कालिदास बड़ा कालिदास जी कैसे सुंदर कवि थे, उनका कुमार संभव किसका है, शकुन कलम किसका है, ये सब कविता है। मैथिल शरण गुप्त का नाम सुना है, वो क्या राम
रामधारी सिंह देनकर
नहीं, राम के ऊपर में उन्होंने कुछ लिखा है, राम
लक्ष्मण की पत्नी के ऊपर जाना
है। हाँ तो वो राम उस काव्य का नाम क्या है, राम पर ही कुछ लिखा है, उसमें उर्मिला की अभिन किया है ये। तो इस तरह से अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम सुना है, जय वो छाया कवि थे जयशंकर, ये सब सरोजिनी नायडू, ये सब लोग मैक्स मुलर, ये सब वर्ड वर्थ और कौन कौन सा शेक्सपियर इत्यादि, ये सब कविता ऐसे हमको नहीं चाहिए प्रभु। न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये, वा को इनके बीच में ले अथवा सुंदरी कविता, ये कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म में आपके चरणों में हमारी अहेतु की भक्ति हो, कृष्ण प्रेमी हमको, बस यही हमारी कामना है, ये बाधा थी इसके लिए। अब तुम्हारा स्वरूप का है तो महाप्रभु जी इस तरह से धीरे धीरे ले जाएंगे, जब ऐसे होकर के जब नाम होगाना शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के अपने आप आंखों में सुधार हुआ आशुधार आ जाएगी। जैसे लोग अपने किसी परिवार के मरने पर रोते हैं, तो पति अपने तो प्रेमी पति यदि गुजर जाए, उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके समाज वाले, अरे हमारे गांधी जी जब गुजर गए तो कितने आदमी प्राण छोड़ दिए, देश के लिए हित किया था ना, उनके संग में थे, उनका व्यवहार देखा था, देश के लिए इतना काम किया, बहुत से लोग एकदम मर गए। इंदिरा गांधी के साथ जब हत्या हुई तो लोग पागल हो गए, अब एक तरफ से कहां कहां क्या क्या ये खून और कहां कहां से कांट फांट और आग लगा करके सब ने ये क्या कमंडल मचा दिया। इसी तरह से अपना स्वरूप क्या है ये देखें, हम कृष्ण के दास हैं इसको भूल गए थे, इसीलिए हम इसके लिए चेष्टा कर रहे हैं कि हम अपने दास सत्व में प्रतिष्ठित हो जाए। कृष्ण हमारे आराध्य हैं, मैं उनका हूं और हमारा कोई संबंध इस जगत से, इस तरह से जब नाम करेगा तो जरूर प्रेम आएगा। आज यही तक रहे, आज लाइट हुई और झलक तो आई थी, लेकिन वो तो दो पास से गई हुई
है, मेरे ख्याल है अब के वो हुआ है।